গোপী জন বলভ গিরিবর ধারে, গোপী জন বলভ গিরিবর ধারে, যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যমুনা তীর বনচারি, যমুনা তীর বনচারি, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে, গোপী জন বলভ গিরিবর ধারে, গোপী জন বলভ গিরিবর ধারে, যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যমুনা তীর বনচারি, যমুনা তীর বনচারি, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে, ওম জ্ঞান তিমিরান্ধস জ্ঞানঞ্জন শলাকয়া, চক্ষুরুন্মীলিতম যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ, বন্দেহম শ্রী গুরু শ্রীযুত পদ কমল, শ্রী গুরুন বৈষ্ণবাশ্চ শ্রীরূপম সাগ্রজাতম সহগণ রঘুনাথান নিতম তাম সজীবম, সাদ্বৈতম সাবধূতাম পরিজন সহিতাম, কৃষ্ণ চৈতন্য দেবম শ্রীরাধা কৃষ্ণ পাদান সহগণ ললিতা শিব শাখান্বিতাশ্চ, হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধ দীনবন্ধু জগৎপতে, গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমোস্তুতে, তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গে শ্রীরাধে বৃন্দাবনেশ্বরী, वृषभान सुते देवे प्रणमामि हरि प्रिय वंश कल्पतरुभयस्य कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। शील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् भागवतम स्कंधे अध्याय सात श्लोक संख्या 13-14 की आवृत्ति करेंगे। यदा मृधे कौरव सिंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिं गदेशो वृकोदरा विद्ध गताभिमर्ष भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृदे कौरव सिंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गताभिमर्ष भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव सिंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गताभिमर्ष भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे शब्दार्थ यदा जब मृधे युद्ध भूमि में कौरव धृतराष्ट्र के पक्ष वाले सिंजयानाम पांडवों के पक्ष के वीरेशो योद्धाओं के अथो इस तरह वीर गति योद्धाओं के योग्य गति गतेशो प्राप्त करने पर बृकोदर भीम आविद्ध प्रताड़ी गदा गदा से अभिमर्ष विलाप करते भग्न टूटा उरुदंडे मेरुदंड धृतराष्ट्र पुत्र राजा धृतराष्ट्र का पुत्र भरतो स्वामी का प्रियम प्यारा द्रौणी द्रोणाचार्य का पुत्र इति इस प्रकार स्म होगा पश्यन देखते हुए कृष्णा द्रौपदी के सुताना पुत्रों का स्वपताम सोते हुए शिरांसी शीर उपाहरत पुरस्कार के रूप में प्रदान किया विप्रियम सुखद एव सदृश तस्य उसका जुगुप्सितम अत्यंत नृशंस कर्म कार्य विगर्हयंती भर्सना करते हैं। तो इसके साथ में दो श्लोक है, इसलिए शब्दार्थ लंबा था, दोनों एक साथ जुगल है। तो अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को यथा योग्य गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काट कर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए अपने स्वामी को अर्पित किया, इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहां श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में अपने विषय में कहा है। अतएव श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं हैं। श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण कथा है क्योंकि श्री भगवान द्वारा कही गई है, और श्रीमद् भागवतम भी कृष्ण कथा है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के विषय में कही गई है। भगवान चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेशानुसार इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। कृष्ण चैतन्य कृष्ण भक्त के वेश में साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य दोनों के मंतव्य समान हैं। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझें और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में सबको इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे दुखी संसार में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। अनुवाद दोहराएंगे। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को यथाजोग्य गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा से प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए अपने स्वामी को अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने जघन्य कृत की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। तो महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे तो महाभारत युद्ध अपने आप में भयानक है और विशाल है, बहुत सारे लोग मारे गए थे। पाजी लिखते हैं 64 करोड़ लोग मारे गए थे और अनगिनत हाथी घोड़े मारे गए थे। चतुरंगिनी सेनाओं से लस महाभारत का युद्ध विशाल, जिसमें कौरव और पांडव पक्ष के अनेक वीर मारे गए थे, अनेक वीर जैसे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जो पांडवों के बहुत प्यारे थे, बड़े वीर थे, असमय में उसकी मृत्यु हो गई थी चक्रव्यूह भेदन में, जबकि अन्याय पूर्वक कई योद्धा मिलकर के उसको मार दिए थे। ऐसे कौरव पक्ष हमेशा अन्याय का ही सहारा लेकर युद्ध कर रहे थे। प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज ने इस युद्ध की विभीषिका को जान करके श्री कृष्ण से कहे कि कृष्ण मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रजा के ऊपर एक विशाल विपत्ति नहीं डालना चाहता हूं, मैं जानता हूं युद्ध हमेशा ही भयंकर होता है और युद्ध में ज्यादातर निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। जब समुद्र में कुछ होता है तो बड़ी मछलियां भाग जाती हैं और छोटी मछलियां ही पकड़ में आ जाती हैं। और बड़ा ऐसे संसार में भी कुछ होता है तो जितने बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, वो छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वो समय को पहले ही भाप लेते हैं और निर्दोष लोग भोले भाले लोग मारे जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहे कि इस युद्ध में मैं जानता हूं बहुत लोग मारे जाएंगे, ऐसे रक्त रंजित साम्राज्य से हमें क्या प्रयोजन है, जीवन जीने के लिए तो केवल भोजन थोड़ा मिल जाए, जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा खाना मिल जाए वो पर्याप्त है, ज्यादा साम्राज्य रहकर क्या करना है। कोई प्रभुपाद लेते हैं, कोई राजा भी हो तो कितना खाएगा, 4-5 चपाती खाएगा। देखने के लिए बहुत संपत्ति हो, बहुत साम्राज्य हो, वो भी सोएगा एक बेड में ही, उसका भी शरीर के लिए 3.5 हाथ की जगह चाहिए, एक बेड चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, बहुत फ्लैट हो, बहुत बड़ी राजधानी में उसके बड़े बड़े आलीशान गगनचुंबी महलें हो, लेकिन सोएगा तो एक ही कमरे में है? खाएगा कितना खाएगा, लोग बोलते हैं राजा कितना खाएगा, बल्कि राजा से अधिक प्रजा खा लेते हैं। और प्रजा को खाने के बाद कोई डाइजेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई हजमोला नहीं खाना पड़ता है, काम करने वाले लोग कई रोटियां खा जाते हैं, एक लोटा पानी भी पी जाते हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, और कहीं भी सो जाते हैं फुटपाथ पर भी। लेकिन जितने बड़े लोग हैं वो मखमली सेज पर भी उनको नींद नहीं आती है, सब कुछ है लेकिन भूख नहीं है, खाने के लिए बहुत कुछ है, वो मालपुआ मलाई पिस्ता रसगुल्ला नहीं खा सकते हैं, लेकिन सब कुछ है लेकिन भूख नहीं है, बहुत सुंदर बेड है लेकिन नींद नहीं है। लेकिन गरीब आदमी तो उसको जो मिले वो भी खाकर हजम कर लेता है और कहीं भी सो जाता है, जमीन पर भी, उसको भय नहीं होता है। हम लोग चलते हैं तो फुटपाथ पर भी, प्लेटफार्म पर भी सो जाते हैं, और बड़े लोग पैसे वाले लोग नहीं सो पाएंगे, को भय रहता है, उनको भय है, उनको सिक्योरिटी चाहिए। हम लोग वृंदावन में या कहीं भी ट्रेन के लिए जाते हैं तो प्लेटफार्म पर भी सो जाते हैं। एक बार हम लोग बांग्लादेश में गए थे तो सिलेट से आ रहे थे, तो ट्रेन बहुत लेट थी तो हम लोग प्लेटफार्म पर ही सो गए। तो इस महाभारत के युद्ध में बहुत वीर मारे गए थे दोनों पक्षों से। युधिष्ठिर महाराज इसकी संभावना पहले ही कर चुके थे, इसलिए कृष्ण कहे कि कैसे भी युद्ध को टालना ही उचित है, युद्ध हमेशा टालने का प्रयास करना चाहिए, अपने प्रयास से जब नहीं होता है तो दैव इच्छा समझ करके इसमें भाग लेना चाहिए। युद्ध बहुत प्रबल थी और भगवान की भी इच्छा थी, भगवान भी युद्ध चाहते थे, यद्यपि संधि दूत बनकर गए थे लेकिन हृदय से संधि नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि भगवान का मिशन है परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसलिए भगवान नहीं चाहते थे। इसलिए दुर्योधन और धृतराष्ट्र के अंतर मन में प्रविष्ट होकर के उनको ऐसा गाइड करते थे कि संधि न हो। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथ में लिखेंगे, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। भगवान हस्तिनापुर में गए और युधिष्ठिर महाराज का संदेश कौरवों को कहे कि न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो, अगर न्याय है तुम्हारे पास तो आधा पांडवों का राज्य दे दो आप लोग, इसमें भी अगर यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, 5 ग्राम दे दो, 5 गांव 5 ग्राम की तरह ही है। लेकिन दुर्योधन यह भी दे न सका और आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था अनंत साधने चला, उल्टे भगवान को बांधने चला कि इसको अरेस्ट कर लो, ग्वारिये को संधि दूत बन कर आया है। जो अनंत है, जो असाध है, उसको कौन साध सकता है? भगवान को बांधने क्या देते? तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। भगवान विराट रूप देगा, सब लोग जहां थे वहीं गिर गए, मूर्छित हो गए। केवल विदुर जी उस रूप को देख करके उसकी स्तुति कर रहे थे। विराट रूप को देखकर विदुर जी उसके विषय में कह रहे थे कि जैसे अर्जुन देखकर कह रहे थे कि पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थम विशिष्ट सर्वानुर्गाच दिव्यान। अर्जुन देख रहे भगवान के शरीर में सारे देवता हैं, स्वयं ब्रह्मा जी हैं कमल के आसन पर, सारे ऋषि हैं, सारे विशाल बड़े बड़े सर्प हैं। उसी तरह विदुर जी उस विराट रूप की शोभा का वर्णन कर रहे थे। तो धृतराष्ट्र को भी ये हुआ कि काश मेरे भी नेत्र होते तो मैं भी देखता। धृतराष्ट्र को हुआ कि मेरे भी नेत्र होते तो मैं भी विराट रूप देखता। तो विदुर जी के निवेदन से धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए आंख मिल गई थी, दिव्य दृष्टि। विदुर जी ने प्रार्थना किया तो विदुर जी के प्रयास से धृतराष्ट्र को नेत्र मिल गया था कुछ समय के लिए। भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया था। तो वो भी उस रूप को देखकर वर्णन कर रहे थे। दिनकर जी लिखे, केवल दो नर नघाते थे और धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। दो लोग उस रूप को देखकर अघा नहीं रहे थे, तृप्त नहीं हो रहे थे, अब वो सुख प्राप्त कर रहे थे। अर्जुन तो भय से भयभीत हो गए थे विराट रूप को देख करके, लेकिन ये लोग उसको देख करके तृप्त नहीं हो रहे थे, न अघाते थे। अघाना मतलब तृप्त हो जाना, न अघाना मतलब तृप्त नहीं हो रहे थे, देख रहे थे, उसका वर्णन कर रहे थे। दो लोग ही, धृतराष्ट्र और विदुर। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, वो लोग उस रूप को देखा वो सुखी हो गए। इसके बावजूद भी धृतराष्ट्र के मन में जैसे भगवान ने उस विराट रूप का संवर्णन किया, धृतराष्ट्र को फिर भी अक्ल नहीं आई कि अब समझौता कर लेना चाहिए। जिस पक्ष में भगवान है तो विजय उनकी ही होगी, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र को अक्ल नहीं आई थी। और महाराज के जैसे कुत्ते की पूंछ को घी लगा कर उसको मसाज करके डंडे में बांध दीजिए 100 वर्ष तक, महाराज कह रहे थे। यद्यपि कुत्ते की आयु इतनी लंबी नहीं होती है, कुत्ते के पूंछ को घी से मसाज करके और डंडे में सीधा करके बांध दीजिए, फिर खोलिए, फिर भी वो टेढ़ा हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र कुत्ते की पूंछ की तरह फिर वहीं के वहीं आ जाते थे। विराट रूप देखे थे, विदुर जी ने उनका बहुत मार्गदर्शन भी किया था कि पांडवों का आधार आज दे दीजिए, लेकिन धृतराष्ट्र के हृदय में वह ज्ञान नहीं टिकता था। तो युद्ध बहुत भयानक हुआ था, दोनों पक्ष के बहुत सारे वीर मारे गए थे। युद्ध के अंत में भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन के कमर को तोड़ दिए थे, उनको मेरुदंड को, यानी कमर के नीचे और जांघ के बीच में तोड़ दिए थे गदा के प्रहार से। जो दुर्योधन द्रौपदी को आमंत्रित कर रहा था कि मेरे जांघ पर बैठ जाओ, तो भीम अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन को के जांघे को तोड़ दिए थे। प्रभुपाद जी मेरुदंड लिखे हैं, यहाँ प्रहार किए थे, कमर टूट गई थी और उस पीड़ा से बिलाप कर रहा था, रो रहा था। तो महाभारत में कथा है कि रात में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मिलने के लिए गया अपने मित्र से। अपने मित्र की स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुआ। दुर्योधन भूमि पर धराशायी होकर के दुख से दुखी था, रो रहा था। यह दशा देख करके द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा को बहुत दुख हुआ। अपने मित्र दुर्योधन को खुश करने के लिए युक्ति निकालने लगा। उसी समय देखा कि एक पेड़ पर बहुत सारे कौवे सो रहे थे रात में, और एक उल्लू उन लोगों के ऊपर सोए में प्रहार किया और सारे कौओं को मारकर गिरा दिया अकेले। कौओं को रात में नहीं दिखाई देती है और उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है। कौओं को दिखाई नहीं दे रहा था रात्रि में, उल्लू को रात्रि में ही दिखाई देती है। तो कौवे शयन कर रहे थे, उसी समय उल्लू प्रहार करके सारे कौओं को मारकर गिरा दिया। तो अश्वत्थामा को एक युक्ति सूझ गई कि क्यों न मैं सोए हुए पांडवों को रात्रि में ही मार दूं। अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए उसने युक्ति निकाला कि एक उल्लू जो है सारे कौओं पर भारी पड़ गया। उल्लू जो है अकेले सारे कौओं को मार करके गिरा दिया, क्योंकि वो सोए थे और उनको सूझ भी नहीं रहा था, अंधेरी रात थी। उल्लू को रात बहुत प्रिय होता है, दिन में बहुत उल्लू को कष्ट होता है, कहीं छुपा रहता है पेड़ पर। जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, चोर को अंधेरी रात ही अच्छी लगती है चोरी करने के लिए। चोर ही चांदनी रात न भावा, चांदनी रात हो पूनम की रात हो बहुत सुहावनी होती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चोर के लिए मन भावन नहीं होती है, उसको अंधेरी रात ही अच्छी लगती है। तो उल्लू को अंधेरा प्रिय है और उस अंधेरे का लाभ लेकर के उन कौओं को गिरा दिया। तो बड़ा अच्छा उसको युक्ति मिला अश्वत्थामा को कि क्यों न मैं सोए हुए पांडवों को उनके शिविर में मार करके अपने मित्र की इच्छा को पूर्ण करूं। अंत में यही युक्ति निकाला कि जैसे भी अधर्म पूर्वक ही हमेशा कौरव पक्ष लोग धर्म का आश्रय लेते, युद्ध में भी अधर्म पूर्वक हराए थे। द्वितीय अधर्मेण जितस्य साधो, उस साधु पांडवों को द्वितीय अधर्म पूर्वक हराया गया था। द्रौपदी को भी अधर्म पूर्वक भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, हमेशा अधर्म का आश्रय लेते थे। तो अश्वत्थामा इस समय भी सोचा कि भले जो भी हो, यह नीति नहीं है, धर्म नहीं कहता है कि किसी को स्वयं में किसी को नहीं मारना चाहिए, और कोई निहत्था हो या मूर्छित हो, युद्ध का नियम भी था कि कोई मूर्छित हो गया है, अस्त्र शस्त्र नहीं लिया है, तो उसको नहीं मारना चाहिए, और एक योद्धा के साथ एक कहीं आदमी को युद्ध करना, ऐसा नियम बना था। एक योद्धा के साथ एक योद्धा लड़ेगा, वो भी योद्धा घायल हो गया, गिर गया, मूर्छित हो गया, तो उस पर प्रहार नहीं करना है। तो नियम, लेकिन नियम का अतिक्रमण कर रहे थे कौरव लोग। अभिमनु को कई योद्धा मिलकर मार दिए थे मूर्छित अवस्था में। कभी कभी पांडव भी भगवान कृष्ण उकसाते थे पांडवों को कि तुम लोग क्या धर्म का ही ये लिए हो, इनके साथ धर्म का क्या बात करना है, जो हमेशा अन्याय के पथ पर ही चलता है उसके साथ क्या न्याय की बात करना है। युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोल रहे थे कि अश्वत्थामा नाम का एक व्यक्ति मारा गया है। भगवान कहे कि कह दो कि अश्वत्थामा नाम का व्यक्ति मारा गया, क्योंकि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था वो मार दिया गया था। तो ये हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया। तो भगवान कहे युधिष्ठिर से कि कह दो अश्वत्थामा हतो नरो, अश्वत्थामा नाम का आदमी ही मारा है। तो द्रोणाचार्य को बहुते हुआ कि हमारा पुत्र तो अमर है, वो मारा नहीं जा सकता, अश्वत्थामा अमर था। भगवान के नहीं नहीं अश्वत्थामा जो आपका पुत्र वही मारा गया है। द्रोणाचार्य कहे नहीं, युधिष्ठिर कहेंगे तब मैं मान जाऊंगा। तो भगवान कहे कि बोल दो। युधिष्ठिर के नहीं नहीं मैं झूठ कैसे बोलूंगा, वो भी गुरु से। बोले नहीं ऐसे बोल दो पहेली के रूप में कि अश्वत्थामा हो तो नरो या कुंजरो। अश्वत्थामा नाम का आदमी मरा कि हाथी मरा, लेकिन मरा है कोई, ऐसे बोल दो अश्वत्थामा हो तो नरो या कुंजरो। अश्वत्थामा हो तो नरो या कुंजरो, वो आदमी मरा है कि हाथी मरा है, लेकिन मरा है। तो युधिष्ठिर महाराज जब कहे अश्वत्थामा हो तो नरो, उसे भगवान शंख बजा दिए जोर से, तो कुंजरो सुनाई नहीं पड़ा। द्रोणाचार्य को इतना ही सुनाई पड़ा अश्वत्थामा हो तो नरो। इसके बाद इतना जोर से भगवान शंख वादन किए, पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान पांचजन्य शंख बजा दिए कि उनके कान में कुंजर नहीं सुनाई पड़ा। इसी पर शोक संविग्न हो गए, शोक में नास्त्र शस्त्र फेंक करके बैठ गए। उसी समय भगवान कृष्ण ने पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न को कहे कि इसी से मार दो, इसको मारना आसान नहीं होगा। द्रोणाचार्य को मारना आसान नहीं था, हमेशा अजय थे। कौरवों के पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, इनको मारना टेढ़ी खीर थी, लोहे के चने चबाना था, कोई मार ही नहीं सकता था। तो भगवान कहे धृतद्युम्न को कहे कि मार दो, तुम्हारे बहन का जब तो निर्वस्त्र किया जाता, ये भी नहीं कुछ विरोध किया था, इसको तो कम से कम बोलना चाहिए था, इस पर भी दोष लगा है। तो धृष्टद्युम्न उसी समय गला काट दिए द्रोणाचार्य का। अर्जुन देख करके हाथ प्रभर गया, बहुत क्रोध में हो गए और मारने के लिए चले कि गुरु को मार दिया इस समय, जबकि नियम के विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र नहीं लिया है तो नहीं मारना चाहिए। मारने के लिए द्रोणाचार्य, अर्जुन मारने के लिए चले अपने साले को, धृष्टद्युम्न को, अपने साले को ही मारने चले। भगवान पकड़ लिए कि तुम्हारा साला है, क्यों मार रहे हो, साला बहुत प्यारा है। कली युग में साला ही ज्यादा प्यारे होते हैं, कली युग में लोग साले से ही सलाह लेते हैं, साला जो कह देगा, साला से और साढ़ू भाई से। आपके साढ़ू भाई हैं? नहीं। लोग कहते हैं आठ, हमारे बिहार में कहते हैं आठ कमानी छाता सढ़ुआना नाता। पहले छाता आठ कमानी का जो तो बहुत फेमस होता था, आठ कमानी और सढ़ुआना नाता, और कहीं से रिश्ता न हो निमंत्रण, लेकिन साढ़ू के यहां से जरूर रिश्ता। तो भगवान कहे कि अर्जुन को कहे कि क्यों ऐसा कर रहे हो। उस समय द्रौपदी को जब लोग निर्वस्त्र कर रहे थे तो कहां कोई विरोध किया था, वहां कहां धर्म की बात, न्याय की बात कहां हो रही थी। ये तो छोड़ो, तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु को मारा गया था, उस समय कहां कोई न्याय की बात कर रहा था, जबकि मूर्छित था, उसके साथ सात योद्धा मिलकर के उसको मूर्छावस्था में प्रहार करके मार दिए थे। भगवान इस तरह से, भगवान तो सब कुछ में पटु हैं, वाक पटु हैं, अपने वाक पटुता से अर्जुन के क्रोध को शांत कर दिए। तो ऐसे अनेक जगह भगवान के उकसाने से पांडव भी जब जो जैसा तैसा, जैसा को तैसा कहिए, वो लोग जब धर्म की बात नहीं मान रहे थे, अधर्म का ही आश्रय लिए थे, तो इन लोगों को भगवान कभी कभी कहे तुम भी करो। तो नियम था कि गदा युद्ध में नियम था कि कमर के नीचे प्रहार नहीं करना है। जब दुर्योधन का और भीम का गदा युद्ध चल रहा था, तो गदा युद्ध में बहुत कुशल थे दुर्योधन। दुर्योधन कला में आगे थे और बल में भीम आगे थे। बल भीम के पास ज्यादा था, लेकिन युद्ध, गदा युद्ध की कला दुर्योधन को ज्यादा थी, क्योंकि बलराम का शिष्य था, गदा का प्रशिक्षण बलराम जी से लिया था, अनेक कला जानता था वो। जैसे पहलवान लोग कुश्ती करते हैं तो जो कोई कला जानता है दाव पेच, तो अपने से बल अधिक बल वाले को भी पछाड़ देता है। तो दुर्योधन लग रहा था कि अब भीम को पछाड़ देगा, भीम थके थके हो गए थे, तब भगवान उकसाए कि क्या कर रहे हो, कमर पर ही प्रहार कर दो। यहाँ पर दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र था, गदा मारने पर भी गदा चूर चूर हो जाता था, उसका शरीर लोहे से भी अधिक कठोर था, कहीं भी प्रहार करने पर कोई असर नहीं पड़ता था, शरीर वज्र था दुर्योधन का। लेकिन कटी प्रदेश जो है वो बहुत नाजुक था कमर। एक बार गंधारी ने दुर्योधन से कहा था कि बहुत सारे पुत्र मार दिए गए थे, तो गंधारी ने कहा अपने पुत्र से कि ब्रह्म मुहूर्त में तुम नग्न मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देख दूंगी, तुम्हारा शरीर वज्र हो जाएगा, कोई मार नहीं सकता है। भगवान अंतर्जामी कृष्ण यह रहस्य को समझ गए, हर जगह पग पग पर पांडवों को विजय दिलाने के लिए, युधिष्ठिर को राज्य गद्दी देने के लिए भगवान हर कौरवों के हर कुचक्र का कोई न कोई काट निकाल लेते थे और युक्ति बतला देते थे। एक दिन दुर्योधन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके नग्न जा रहा था माँ के पास। माँ ने कहा था ना कि ब्रह्म मुहूर्त में आना, मैं तुम्हारे ऊपर दृष्टिपात करूंगा, शरीर वज्र हो जाएगा, भगवान देखे कि बहुत बाधा हो जाएगा, मैं जो चाहता हूं कि युधिष्ठिर को राज्य गद्दी दूं, युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मात्मा को भगवान राजा बनाना चाहते थे, भगवान का हमेशा यही उद्देश्य होता है कि पृथ्वी कोई धर्मात्मा राजा हो। भगवान राम भी रावण पर विजय प्राप्त करके भक्त विभीषण को राज्य दिए। अब भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते थे, तो दुर्योधन गंधारी के कथनानुसार जा रहा था नग्न, भगवान रास्ते में मिल गए, बोले क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, नग्न नहीं घूमना चाहिए, तो माँ के पास जाए, तो अपनी माँ के पास जा रहे हो, वो भी माँ, कम से कम अपना गुप्तांग तो ढंग लो, ठीक है जा रहे हो लेकिन कम से कम कटी प्रदेश गुप्तांग को तो ढंग लो। तो भगवान कृष्ण के द्वारा कन्विंस हो गया और अपने गुप्तांग को केले के पत्तियों से ढक लिया, कौपिन बना लिया, जैसे हम लोग कौपिन पहनते हैं ना, वैसे केले के डंठल के रस्सी को कमर में बांध लिया और पत्तों को कौपिन बना लिया। और जब माँ के पास गया तो माँ ने अपना दृष्टि खोला, गंधारी अपनी दृष्टि कभी नहीं खोली थी, सती नारी थी गंधारी भी, अपने दृष्टि से अपना आवरण हटाया और देखे तो उसके दृष्टि से जैसे मानो तेज निकल रहे थे, जैसे सूर्य से असीम रश्मियां निकलती हैं, उसमें सतीत्व का इतना तेज था, उसके शरीर के ऊपर जैसे लोहे पर कोई वोल्डिंग करता है ना, कैसे लोहे पर वोल्डिंग, कितना प्रकाश निकलता है, उसके शरीर को मानो वज्र जैसा वोल्डिंग कर दी, नेत्र से शरीर वज्र होगा, लेकिन कटी प्रदेश में जो केले के छिलके पत्ते थे उससे वो प्रदेश वज्र नहीं हो पाया था, कटी प्रदेश उसका कमजोर रह गया था। तो भीम को भगवान उकसाए कि वहां नीचे प्रहार करो, जबकि नियम था कि नीचे नहीं मारना है, ऊपर ही मारना है, भगवान नीचे मारो इशारा कर रहे थे। भगवान इस तरह से दुर्योधन को भीम के गदा से बुरी तरह घायल कर दिए, घायल करा दिए, तरह घायल हो गया, कमर टूट गई, रोने लगा। ऐसा कहा जाए तो वहां बलराम जी बहुत क्रुद्ध हुए देख करके, बलराम जी भी आ गए थे यात्रा करते हुए, बलराम जी मरने जा रहे थे अर्जुन को कि नियम के विरुद्ध कार्य हुआ है, बाद में भगवान ने समझा दिया। अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए भर्तु प्रियम, अपने भर्तु अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए दौड़ी। इतिस्म पश्यन, द्रोणी मतलब अश्वत्थामा अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए एक रात्रि में द्रौपदी के सोए हुए पांचों पुत्रों को काट करके मस्तक ले आया। द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे और सोए अवस्था में, वो भी महारथी थे, सोए अवस्था में उनके शिविर में जा करके उनका गला काट करके ले आया और सोचा कि से हमारा मित्र बहुत प्रसन्न होगा, हमें उपहार देगा, हमें बहुत प्राइज देगा। जब ले आया तो ताकि लीजिए पांडवों का सिर लाया हूं। दुर्योधन जब देखा इसे दबाया तो बहुत कोमल कोमल से दबाने से हो जाते। दुर्योधन भी तो महारथी था, इसे दबाते तो बोला कि अरे तुमने अनर्थ कर दिया, ये पांडवों के सिर नहीं है, ये द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं, तुमने तो पूरा वंश परंपरा ही समाप्त कर दिया और कौरवों और पांडवों के बीच में कोई धरोहर नहीं बचा था। ये कहीं धरोहर में परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में थे, यद्यपि इस रहस्य को दुर्योधन जानता था कि नहीं जानता था, लेकिन परीक्षित महाराज उस समय उत्तरा गर्भ में थे, लेकिन प्रत्यक्ष और कोई नहीं संतान था, न कौरव पक्ष में न पांडव पक्ष में। द्रौपदी के पांच पुत्र मार दिए गए तो दुर्योधन को बहुत शोक हुआ, इतना शोक से अप्लायित हुआ कि उसकी निंदा करने लगा, भर्त्सना करने लगा, तुमने बहुत जघन्य पाप कर दिया है, वो भी सोए हुए बच्चों का सिर काट लिया हो। और उसी में इतना शोक, पहले हर्ष हुआ, अश्वत्थामा ने कहा कि पांच पांडवों का सिर लाया हूं, तो बहुत खुश हुआ। जब देखा स्पर्श किया तो कहा कि अरे तो द्रौपदी के पांच पुत्र हैं, तो बहुत शोक भी हुआ, हर्ष और शोक। पहले हर्ष हुआ, बाद में इतना शोक हुआ, ये शोक करते ही फिर मर गया हूं। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काट कर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए अपने स्वामी को अर्पित किया कि बहुत प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन इस जघन्य कृत की निंदा की, तुमने बहुत अनर्थ कर दिया। वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को, प्रभुपाल जी लिखते हैं कि भगवत गीता महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ वहां से भगवान की लीलाएं प्रारंभ होती हैं, जहां भगवत गीता का उपदेश का अंत होता है और महाभारत का युद्ध संपन्न होता है तो वहां से भगवान की लीलाएं खत्म होती हैं। भगवत गीता में भगवान अपने विषय, भगवत गीता भगवान का उपदेश है और श्रीमद् भागवतम में भगवान के विषय में बताया गया है। एक भगवान खुद कहते हैं और एक में भगवान के विषय में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम भगवान के विषय में बताया गया है, भगवत गीता कृष्ण कथा है क्योंकि यह श्री भगवान द्वारा कही गई है, और श्रीमद् भागवतम भी कृष्ण कथा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विषय में कही गई है। गीता भगवान स्वयं कहते हैं और भागवतम में भगवान के विषय में, भगवान की अनेक लीलाएं हैं, उनके भक्तों की लीलाएं हैं, ये बातें हैं। ये जो कथाएं हैं श्रीमद् भागवतम में ये भी दिव्य है। जो द्रौपदी के पुत्रों का जो वध है, बाद में दुर्योधन को शोक होता है और फिर शरीर छोड़ देता है, इतना शोक में उसका मन हृदय भर जाता है कि फिर मर जाता है, यही सोच करके कि अब स्कूल में और कोई नहीं रहा, ये पृथ्वी का साम्राज्य कौन भोगेगा, अब उसको अक्ल आया। लोग बोलते हैं सब खोने के बाद व्यक्ति को अक्ल आता है, दुर्योधन को ये अक्ल पहले आ गया होता, उस समय अक्ल आया कि अब कौन इस साम्राज्य को भोगेगा। सारे लोग मार दिए गए। इतना शोक हुआ कि वो शरीर छोड़ दिया। व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है तब बुद्धि आती है। अगर ये पहले ही अकला गया होता तो काहे को होता। दुर्योधन को लास्ट में अकल आया, उसकी बुद्धि आई। जब व्यक्ति को अहंकार जब चूर चूर हो जाता है, उसका अपना बल, अपने परिवार का बल, अपने धन का बल, दुर्योधन को ही बहुत गुमान था। उसके बाद बड़े बड़े योद्धा थे तो उसको ये था, भरोसा था, अपने बल का भी भरोसा था, साम्राज्य का भरोसा था। ये अंत में कोई साथ काम नहीं आया, तब उसको अक्ल आया। अब उसका क्या मतलब है? जैसे का बरसात जब कृषि सुखाने, समय बीत पुनिका पछताने। अब तो समय बीत गया था, पछताने से क्या लाभ है? अगर कृषि में सुखाड़ हो गई फिर वर्षा हो तो क्या लाभ है? का बरसात जब कृषि सुखाने, आ समय बीत पुनिका पछताने। अब तो समय बीत चुका था, पश्चाताप करने से क्या मिलने वाला है? ऐसा शोक हुआ कि ये हो गया। कृष्णा सुतानाम सुतानाम शिरांसी। कृष्णा मने द्रौपदी के, सुताना मने पुत्रों को, बहुवचन में सुतानाम, पांच पुत्रों को, द्रौपदी के पांच पुत्रों को स्वयं में ही सिर को काट कर लाया था। कृष्णा सुतानाम स्वपताम शिरांसी उपाहरत भी प्रियमे वत्स्य। उपहार स्वरूप दिया कि हमारा प्रिय मित्र खुश होगा। कोई अपने मित्र को उपहार देता है ना तो खुश होता है कि हाँ वाह बहुत सुंदर लाए। मित्र को उपहार देना चाहिए कभी कभी, उसके विवाह में या उसके जन्मदिन पर, या कभी उसके घर कोई उत्सव हो तो उसको कुछ भेंट देना चाहिए। भोज उठाता हो जब साथी, तुम भी उसकी मदद करो। फल मेवा हो या मिठाई, बांट बांट करके खाओ। कोई मित्र है तो आपस में बांट कर लोग खाते हैं, फल हो या मेवा हो या जो भी हो, तो एक मित्र दूसरे मित्र को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए को देता है कि आप भी लीजिए। और उसके यहाँ कोई उत्सव हो, भोज हो, तो उसको लोग गिफ्ट लेकर जाता है या उसको मदद करता है, सहायता करता है, या कोई विपत्ति है तो उसकी मदद करता है, बहुत दुखी है तो उसको अनेक युक्ति से उसको प्रसन्न करना चाहता है। तो उसी तरह दुर्योधन को भी प्रसन्न करना चाहता है। दुर्योधन दुख के महासागर में डूब रहा था, विपत्ति के महासागर में डूब रहा था, उस समय अश्वत्थामा उसको खुश करना चाहता था। और खुश करने के लिए यही उपहार ले गया। क्या उपहार ले गया? कि कृष्णा सुतानम, कृष्णा, कृष्णा कहेंगे तो द्रौपदी हो जाती है, कृष्ण कहेंगे तो कृष्ण, बहुत लोग कृष्णा कृष्णा जपते हैं और द्रौपदी हो गया। कृष्णा कृष्णा जपना चाहिए। एक बार अतुल कृष्ण महाराज प्रवचन कर रहे थे ऑडिटोरियम में, तो कहे कि कृष्णा नहीं होना चाहिए, कृष्ण कृष्ण कृष्णा कहेंगे तो उसका अलग मीनिंग हुआ, द्रौपदी हो गया। बोलो कृष्णा कृष्णा रामा रामा जपते हैं, हरे रामा हरे रामा, ना रामा नहीं होना चाहिए, रामा मतलब लक्ष्मी हो गया रामा, कृष्णा मतलब द्रौपदी हो गया, कृष्णा होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। यहाँ कृष्णा सुतानाम स्वपताम शिरांसी, जघन्य पाप किया था, वो भी स्वयं में बच्चों को काट कर ले गया। जुगुप्सितम, बहुत पाप में क्रिया किया, जुगुप्सितम कर्म बिघर यंती, ऐसे कार्य की कोई प्रशंसा नहीं कर। यद्यपि दुर्योधन दुष्ट था लेकिन वो भी इसकी प्रशंसा नहीं किया, निंदा किया। दुर्योधन यद्यपि उसमें उतने अच्छा अच्छे गुण नहीं थे, वो व्यक्ति भी अश्वत्थामा की निंदा की, तुम बहुत बदमाश हो, ऐसा कार्य किया तुम, जुगुप्सितम अत्यंत निरसंस कार्य है, बिगर ये यंती उसकी भर्सना करने लगा, निंदा करने लगा, बहुत बदमाश हो, ऐसा क्यों किया? खोदा पहाड़ निकली चुई है, बेचारा सोचा था कि हमको इनाम मिलेगा, प्राइज मिलेगी जो सोचा हुआ ही नहीं उल्टे डांट मिलने लगी, बहुत निंदा होने लगी। तो इस तरह से दुर्योधन को बहुत शोक हो गया और अंत में उसी शोक में अपना शरीर छोड़ दिया। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, समय तो हो गया है, प्रश्न नहीं लेना है ना, 2 मिनट का समय है, 9:15 तो कहीं था ना टाइम, जाने दीजिए, बंद कर देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।